गुरु भक्ति योग जिस प्रकार सूर्य की प्रखर किरणों से तप्त मनुष्य वृक्ष की शीतल छाया में और दिन भर की गर्मी के बाद शीतल चांदनी में असीम आनंद की अनुभूति करता है, उसी प्रकार संसार की प्रखर किरणों से जला हुआ और शांति के लिए व्याकुल बना हुआ मनुष्य ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु के चरणों में इच्छित शांति और आनंद की अनुभूति करता है। ईश्वर साक्षात्कार केवल स्वप्रयत्न से ही नहीं हो सकता, उसके लिए गुरु कृपा अत्यंत आवश्यक है। आपको अगर सचमुच ईश्वर साक्षात्कार की तड़प होगी तो अपने आध्यात्मिक गुरु को आप अपने घर के द्वार पर खड़े पाएंगे। जो इस संसार सागर में इधर उधर डूबते उतराते रहते हैं, उनके लिए बुद्धिमान गुरु का ही आश्रय श्रेष्ठ है। आचार्य से प्राप्त की हुई तथा सेवा से तीक्ष्ण बनी हुई ज्ञान रूपी तलवार एवं ध्यान की सहायता से शिष्य मन वचन प्राण और देह के अहंकार को काट देता है तथा सब राग द्वेष से मुक्त होकर इस संसार में वह स्वेच्छापूर्वक विहार करता है। संसार के दुखों को देखकर सिद्धार्थ का वैराग्य जाग उठा। अपनी पत्नी के विश्वासघात ने राजा भर्तृहरि को जगा दिया था। राजा भर्तृहरि के पास विशाल साम्राज्य था। उनकी पिंगला नाम की अत्यंत रूपवती रानी थी। राजा को रानी के ऊपर अटूट विश्वास एवं प्रेम था, परंतु वह रानी राजा के बदले एक अश्वपाल से प्रेम करती थी और वह अश्वपाल भी रानी के बदले राज नर्तकी को चाहता था। वह राज नर्तकी अश्वपाल की जगह राजा भर्तृहरि को स्नेह करती थी। एक दिन एक योगी ने राजा को एक अमर फल दिया। राजा ने रानी के वियोग के भय से उसे अमर बनाने के लिए वह फल खाने के लिए रानी को दे दिया, परंतु मोहवश रानी ने वह फल अश्वपाल को दे दिया। अश्वपाल ने वह फल राजनर्तकी को दे दिया, किंतु राजनर्तकी ने जब वह फल राजा को दिया तभी यह सारा सत्य बाहर आया। रानी की बेवफाई को देखकर राजा के पैरों तले की जमीन खिसक गई। राजा भर्तृहरि ने बाद में अपने नीतिश शतक में इस घटना के बारे में लिखा है, या चिंतयामि सततम मयि सा विरक्ता साप्यन्यमिच्छन्ति जनः स जनोऽन्यसक्तः अस्मत् कृते च परितुष्यति काचिद्यन्या धिक्तां च तं च मदनम च इमाम च माम च। मैं जिसका सतत चिंतन करता हूं वह पिंगला मेरे प्रति उदासीन है। वह पिंगला भी जिसको चाहती है वह अश्वपाल तो कोई दूसरी ही स्त्री यानी राजनर्तकी में आ सकते हैं। वह राजनर्तकी मेरे प्रति स्नेह भाव रखती है। उस पिंगला को धिक्कार है, उस अश्वपाल को धिक्कार है, उस राजनर्तकी को धिक्कार है, उस कामदेव को धिक्कार है और मुझे भी धिक्कार है। उसके अंतः चक्षु खुल गए। उन्होंने रनिवास सिंहासन और राजपाट सब छोड़कर विवेक रूपी कटार से तृष्णा एवं राग की बेल को एक ही झटके में काट दिया। फिर जंगलों में भटकते भटकते भर्तृहरि ने गुरु गोरखनाथ के चरणों में निवेदन किया, हे नाथ, मैंने सोने की थाली में भोजन करके देख लिया और चांदी के रथ में घूमकर भी देख लिया। यह सब करने में मैंने अपनी आयुष्य को बर्बाद कर दिया। अब मैं यह अच्छी तरह जान चुका हूं कि यह भोग तो बल तेज तंदुरुस्ती और आयुष्य का नाश कर डालते हैं। मनुष्य की वास्तविक उन्नति भोग पूर्ति में नहीं वरन योग में है। इसलिए आप मुझ पर प्रसन्न होकर योग दीक्षा देने की कृपा करिए। राजा भर्तृहरि की उत्कट इच्छा व वैराग्य को देखकर गोरखनाथ ने उन्हें दीक्षा दी एवं तीर्थाटन की आज्ञा दी। तीर्थाटन करते करते, साधना करते करते भर्तृहरि ने आत्मानुभव किया। उसके बाद कलम उठाकर उन्होंने 100-100 श्लोकों की 3 छोटी छोटी पुस्तकें लिखी, वैराग्य शतक, नीति शतक एवं श्रृंगार शतक। ये आज विश्व साहित्य के अनमोल रत्न हैं। इस प्रकार जिसके पूर्व जन्मों के संस्कार अथवा पुण्य जगे हो, तब कोई वचन, कथा अथवा घटना उसके हृदय को छू जाती है और उसके जीवन में विवेक वैराग्य जाग उठता है। उसके जीवन में महान परिवर्तन आ जाता है। रोगी, वृद्ध एवं मृतक व्यक्ति को देखकर सिद्धार्थ का वैराग्य जाग उठा। पिंगला के विश्वासघात को देखकर भर्तृहरि का विवेक जाग उठा और उन लोगों ने अपने विशाल साम्राज्य को ठोकर मार दी। इसी प्रकार खाली गोदाम को भरने वाले परम पिता परमात्मा की करुणा कृपा को देखकर श्री लीला राम जी ने स्नेहमयी चाची के प्रेम एवं गुरु गद्दी का भी त्याग कर दिया एवं परमात्म तत्व की खोज में निकल पड़े। वे टंडो मुह खान में आकर अपने बहनोई के भाई आसन दास के साथ रहने लगे। वहां उन्होंने नारायण दास के मंदिर में हिंदी सीखना शुरू किया। हिंदी का ज्ञान प्राप्त करने के बाद श्री लीलाराम जी ने वेदांत ग्रंथों का अभ्यास शुरू किया। गांव के छोर पर संत हंस निर्वाण का आश्रम था। जोधपुर के एक बड़े विद्वान और ज्ञानी महापुरुष स्वामी परमानंद जी उसमें रहते थे। श्री लीलाराम जी के ऊपर उनकी मीठी कृपा दृष्टि पड़ी। श्री लीलाराम जी के उत्साह एवं तत्परता को देखकर वे उन्हें वेदांत पढ़ाने में ज्यादा दिलचस्पी लेने लगे। इस प्रकार लीलाराम जी एक ओर सांसारिक एवं आध्यात्मिक विद्या में तीव्र प्रगति कर रहे थे तो दूसरी ओर उनकी त्याग व वैराग्य वृत्ति भी खूब प्रबल होती जा रही थी।